नहनु आलम बिमा यस्तबिऊना भी, हम ज्यादा जानते हैं साथ उसके जो वो सुनते हैं। इज यस्तमीऊना इलैक, जब वो सुनते हैं आपकी तरफ, यानी आपकी मजलिस में बैठते हैं, किस नीयत से बैठे हैं, क्या दिल के अंदर इनके हो रहा है, हक की तलब कितनी है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और क्या वो सुनते हैं, क्या वो क्या बातें हैं जिनके ऊपर कान लगाते हैं, तो ये भी अल्लाह को पता है। जब प्रिटेंड कर रहे थे कि बड़े गौर से सुनते हैं, अल्लाह को पता है। इस्तमियाउन इस्तेमा कहते हैं गौर से कान लगा के सुनना। क्या वो सुन रहे हैं, किस नियत से सुन रहे हैं, क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, ये अल्लाह को पता है। वह इद हम नजवा, क्योंकि वो ऐसे बोलते तो यानी दिखते तो ऐसे थे कि जैसे बड़े गौर से सुन रहे हैं, तासर तो यही देते थे कि हम तो बड़े ही मुखलिस हैं, हम देखे कितनी गौर से बातें सुनते हैं, और उसके बाद बाहर जाके कुछ और बातें करते थे। इसीलिए फरमाया वह इज नजवा, वह इद हम नजवा, और जब वो सरगोशियां करते, जब अपने साथियों के पास जाके बैठ के बातें करते, इसके ऊपर बातें बनाते हैं इस कुरान पे, इस यकूलो तोलिमुना, इधर दिखा रहे हैं कि हम बड़ा गौर से सुनते हैं, और जब बाहर जाते हैं नजवा करते हैं उनके साथ, यानी सरगोशियां करते हैं, तो जालिम कहते हैं तत्तबिउना इल्ला रजुल मसहूरा, तो मुसलमानों को कहते हैं कमजोर ईमान वाले मुसलमानों को, नए नए जो मुसलमान हुए उनको जाके कहते हैं तुम तो एक आदमी जो जादू जदा है, जिसके ऊपर जादू हुआ हुआ है, उसके पीछे चल रहे हो। यानी उनको हटाने के लिए ये वो हरबा इस्तेमाल करते थे कि हमने तो सुन लिया, हम तो सुन के आए हैं, ये सारी ये जादू की बातें, तो तुम तो ऐसे आदमी के पीछे लगे हुए हो जो जादू वाला है, जिसके ऊपर जादू हुआ है। उन्जुर कैफ दरबु लकल अम्थाल, कि देखिए कैसे वो आपके लिए मिसालें बयान करते हैं, कैसे मिसालें बयान करते हैं, कि कभी कहते साहिर है यानी जादूगर है, कभी मजनून, कभी काहिन, कभी शायर, दल्लू फला यस्तुना सबीला, वो भटक गए हैं, उनको खुद ही रास्ता नहीं पता, रास्ते पे आने की इस्तात नहीं रखते। यानी दल्ला कहते हैं कि निशान गुम हो जाना रास्ते का, गुम कर देना, रास्ते से हट जाना, और उस खुद ही भटके में उनको खुद ही नहीं, कंफ्यूज इतने हैं, समझ ही नहीं आ रही कि कहें तो कहेंगे, किसी को कहते ये काहिन है तो कहते नहीं तो काहिन तो नहीं लगते, ये काहिन तो ऐसी नहीं बात करता, किसी को कहते मजनून है वो कहते मजनून थोड़ी है, ये मजनून तो मजनून ऐसा थोड़ी होता है, किसी को कहते शायर है शायर, बड़े बड़े शायर कह रही थी शायरी, ये तो किसी इंसान की शायरी है ही नहीं। अब समझ नहीं आती थी इनको कि करें तो करें क्या। आज भी देखिए जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ है ना, चैन से फिर भी नहीं बैठते, कभी कुछ कहते हैं, कभी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की शादी का मसला लेकर आ जाते हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडियों का मसला लेकर आ जाते हैं, कभी कोई एक बात पे तो रुकते ही नहीं, कोई ना कोई शोशा छोड़े रखते, और बेदलील बातें, सोचे समझे बातें। सुलेमान अलैहि सलाम की 99 बीवियां थी, दाऊद अलैहि सलाम की, तो इतनी बीवियों के पास वो लोग जाते थे, उन पैगंबरों को नहीं कहते, लेकिन आज वही उन्हीं के मानने वाले, उन पैगंबरों के मानने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्जाम लगाते। अल्लाह अकबर। तो देखे यहां पे बताया गया कि एक तो उनसे इनके लिए कुरान को सुनना मुश्किल और तौहीद की बात को सुनना मुश्किल, तौहीद से नफरत है, और फिर कहते हैं ये तो जादू जदा है। जब नूह अलैहि सलाम ने भी तौहीद की तरफ लोगों का बताया बुलाया था, तो लोगों का क्या रिएक्शन था कि कानों में उंगलियां ठूंस लेते थे, कपड़ों से मुंह छुपा लेते थे कि कहीं आके हमें ये तौहीद की बातें ना बताएं। तो तौहीद बेस है, इसको जरूर समझना है, इससे नहीं दूर भागना। और दूसरी ये बात कि जितने लोग प्रोपोगंडा करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, ना कुछ तो उनको कहेंगे ना, ये ऐसे थे ये ऐसे थे, कितनी भी बातें कर लें वो जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल रहे, लेकिन उनके अंदर कोई भी सब्सटेंस नहीं है, वो भटके हुए रास्ते से। अगर आप गौर करें तो उनकी उनकी बातों के अंदर बिल्कुल बेसलेस बातें करते हैं, लेकिन चूंकि इतने अंदर लावा पल रहा होता, वो ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे मजाक, ऐसी ऐसी तहकीर की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करते हैं, क्योंकि जब नबी अलैहिस्सलाम की रेपुटेशन किसी के जहन के अंदर खराब कर देंगे, किसी के उनको उनको अगर उनके ऊपर गलत बातें लगा के उनका इमेज खराब कर देंगे, तो जब रसूल का इमेज खराब कर दिया तो उसके बाद इस्लाम से वो इंसान तो समझ ले हट गया, वो बंदा फिर इस्लाम के ऊपर नहीं रह सकता, और यही वो चाहते हैं। शैतान का तो यही काम है ना। वकालू, और वो कहते हैं, अइज़ा कुन्ना अइज़ाम वरुफ़ातन, जब हम हो जाएंगे हड्डियां और चूरा चूरा मर के हड्डियां, और हमारे हड्डियां भी बोसीदा होके उनका भी चूरा हो जाएगा, इन्ना लबाउथुना खलकन जदीदा, कि हम फिर उठाए जाएंगे एक नई पैदाइश। बार बार कुरान में कई दफा आया है कि उनके अकीदा आखरत में ये बहुत बड़ा मुश्किल थी उनके लिए समझना कि कैसे हो सकता है कि हम हड्डियां हो जाएं, चूरा चूरा जाए, फिर उसके बाद हमें खड़ा किया जाए। अबू जहल हड्डियां ले आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और उसने उनको हाथ में मसल के दिखाया कि देखो ये बिल्कुल, यानी इतनी ज्यादा वो सीधा हो चुकी थी कि हाथों के अंदर ही चूरा हो रही थी, तो उसने कहा इनको खड़ा करेगा। यानी असल में इंसान अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत को अपनी कुव्वत पे कयास करता है, ऐसी समझता है जैसे मेरी ताकत है, जैसे हम आजिज बेबस वैसे ही पता नहीं अल्लाह भी है, नऊज़ु बिल्ला, जैसे हम नहीं कर सकते इन हड्डियों को, हमारे तो सामने ये गली सड़ी हड्डियां, ये रेजा रेजा, ये कैसे खड़ी हो सकती जब हमारी अकल में नहीं आ सकता, तो फिर अल्लाह नहीं कर सकता। ये नहीं बात, असल मसला यहाँ पे होता है जब इंसान अल्लाह की कुव्वत और ताकत को नहीं जानता और नहीं पहचानता, उसको समझ ही नहीं है कि अल्लाह ताला की कुव्वत क्या, तो तब इंसान ऐसी बातें करता है। जो इंसान जानता है कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ने हमें पहली मर्तबा भी पैदा किया जब हम मट्टी तो थे, उसी मट्टी से पैदा किया, तो अब भी हड्डियों का चूरा हो गया, मट्टी हो गया, तो तुम दोबारा पैदा कर सकता, तो फिर उसको तो मसला नहीं होता। मसला इनको है जिनको समझ नहीं। तो फरमाया कुल, कह दीजिए आप, इनको जवाब दे। अब उनका इतराज बताया और उसका जवाब बताया, कूनू हिजारतन औ हदीदा, चाहे तुम पत्थर बन जाओ, चाहे तुम लोहा बन जाओ, ऐसी चीज भी, इतनी सख्त चीज भी बन जाओ जो इतनी सख्त है कि इससे ज्यादा बजाहिर सख्त चीज कोई नहीं, औ खलकन मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या इससे भी कोई बड़ी चीज बन जाओ जो तुम्हारे दिलों में कोई, इससे भी कोई बड़ी चीज है ना, वो भी तुम बन जाओ, तब भी अल्लाह तुम्हें खड़ा करेगा। तो तुम पत्थर हो, लोहा हो, पत्थर से ज्यादा सख्त चीज हो, इंसान तो सबसे सख्त चीज पत्थर को समझता है ना, इसलिए कहता है पत्थर दिल फला, उससे भी सख्त चीज बन जाओगे फिर भी अल्लाह तुम्हें दोबारा खड़ा कर दे। ये अकीदे को इतना रीइंफोर्स क्यों किया गया? इसलिए कि अगर ये ईमान नहीं है ना, तो फिर सारे ईमान मुतजलजल हो जाते। अगर ये ईमान नहीं है कि आखरत है, तो इसका मतलब आपने अल्लाह ताला की कुव्वत को वैसे नहीं समझा जैसे उसकी कुव्वत है, तो अल्लाह पे ईमान भी खत्म हो गया, और आपने रिसालत का भी इनकार कर दिया, क्योंकि रसूल ने भी आके ये बताया, रसूल ने आके ये बताया ना आखरत का, तो रिसालत का भी आपने ईमान नहीं रहा जब, अगर आखरत पे ईमान नहीं, क्योंकि रसूल की बात को ही नहीं माना तो रिसालत पे ईमान ही खत्म हो गया। रसूल को आके किसने बताया? फरिश्ते ने। रिसालत का इनकार फरिश्तों का, एक ईमान का इनकार भी ना ईमानियात में से सबका इनकार है, तो पूरी इमारत हिल जाती है जब आप एक भी ईमानियात में से एक का भी इनकार करते। और ईमान बिलाखरा तो बहुत फाउंडेशंस में से है, बुनियादों में से है, ये जब हिलता है तो इंसान अमल से जाता है, हिलता है तो इंसान ईमान से जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये ईमान मजबूत हो कि हाँ अल्लाह हमें उठाएगा, हमें खड़ा करेगा, हमारा हिसाब किताब होगा, और जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जैसी कुरान ने डिस्क्रिप्शन बताई है, उसी तरह हमारा आखरत पर ईमान हो। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा एक दिन उठाएगा, तो उसके बाद फिर अपना ही कुछ और ही बनाया हुआ दिमाग में कि ऐसा हो जाएगा, नहीं सभी बख्शे जाएंगे, नहीं कुछ नहीं होगा, सभी जन्नत में चले जाएंगे, वहां पे जहन्नम है ही नहीं। अब उस वक्त में उस मुआशरे के अंदर बाज लोगों का तो ईमान आखरत पे था ही नहीं, वो इस तरह की बात करते थे जैसे कुरान में। बाज का था तो वो कहते थे कि सारे वहां पे हमारी सिफारशी, हमारी सिफारिश ये बुत करा देंगे, ये जो लोग इनके पीछे, इन बुतों के पीछे, और बस हमारी वहां पे खलासी हो जानी, कुछ नहीं होगा हमारे साथ। यानी इतने गलत अकीदे, ईमान बिलाखरत के साथ है, और ईमान बिलाखरत वो ही है जो पूरा का पूरा, ईमान बिलाखरत सिर्फ ये नहीं है कि हाँ एक कयामत का दिन है, ठीक है, वो तो ये आप किसी ईसाई को भी पूछेंगे वो भी कहता है डे ऑफ जजमेंट, वो भी कहता है। लेकिन मसला है कि जब ईमान बिल आखरत वैसा नहीं होता जैसा कि पूरा को पूरा बयान किया गया है, तब समझे ईमान ही नहीं। अब हर चीज पे आपने ईमान लाना है जैसे कि बयान की गई है कुरान और हदीस में। सिर्फ ईमान बिल आखरत ये नहीं कि कयामत आनी है, वो उसका इनकार करते थे लिहाजा उनका ईमान। अब अगर मुसलमान हो के कोई ये कहता है कि मैं जहन्नुम पे ईमान नहीं रखता, कोई जहन्नुम नहीं है या जन्नत नहीं है, मेरा उस पे ईमान नहीं है, तो ईमान बिलाखरा खत्म हो गया मुझे। फसे यकूलू ना मैं युआदू ना, बस अनकरीब वो कहेंगे कौन लौटाएगा हमको, ये कैसे हो सकता है कि हम लौटाए जाए। ये भी फिर अल्लाह ताला की ताकत, उसकी पावर में शक कुलिल्लदी फतरकुम अव्वल मर्रा, तो इसका सिंपल जवाब, जिसने पैदा पहली दफा किया वही दोबारा लौटा देगा। फसा युनगिदूना इलैका रुउसहुम, तो वो अनकरीब सर हिलाएंगे तेरी तरफ, अपने सरों को इस तरह हिलाएंगे जैसे कि बात बड़ी समझ आ रही है, सवाल जवाब हो रहा है ना, एक डायलॉग हो रहा है। जब उनको एक बात का जवाब मिल जाता है तो सारे ऐसे करते जैसे बड़ा हाँ समझ गए समझ गए, लेकिन असल में मजाक में सारे हिला रहे होते ना, जैसे हाँ पता है। फिर अगला सवाल करते, यकूलू ना मत हुआ, फिर कहते कब होगा फिर ये, अभी तक तो हुआ नहीं, कब होगा फिर, कब पैदा करेगा दोबारा। कुल आसा यकूना करीबा, आप कह दीजिए उम्मीद है कि वो करीब ही हो। याद रखे दो लफ्ज आसा और लाअल्ला, ये जब कुरान में आते ना तो शायद की बात नहीं होती, यकीन की बात होती। अल्लाह ताला के लिए जब ये आ जाते हैं ना, जब अल्लाह ताला कोई बात करा तो वैसे इसका मतलब उम्मीद का होता है, हो सकता है शायद, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए ये आ जाए तो यकीनन ऐसा ही है, यकीन का माना देता, तो यानी यकीनन वो करीब ही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियां मिला के फरमाया कि मैं और कयामत ऐसे ही हैं, यानी अब मेरे बाद कयामत ही आनी है। इन्नहुम यरौनहु बाइदा व नराहु करीबा, वो उसको दूर देखते हैं और हम करीब देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मारिज में कि वो तो कहते हैं बड़ी दूर है अभी कहाँ कयामत, और हम कहते हैं करीब, इसलिए कि इंसान की जो ही मौत आएगी उसकी कयामत शुरू हो जाती है, उसका हिसाब किताब भी शुरू हो जाता है, वो फरिश्तों को भी देख लेता है, उसको अगली दुनिया भी नजर आने शुरू हो जाती है, गैब का पर्दा भी उठ जाता है, उसकी कयामत तो शुरू हो गई ना। अब कयामत चाहे हजारों साल बाद आए, वो तो कब्र के अंदर अपने भुगत रहा है, जन्नत की तरफ की खिड़की खुल जाएगी या जहन्नुम की तरफ की खिड़की खुल जाएगी, या तो अजाब शुरू हो जाएगा या जजा का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो उसकी तो वहां की सारी चीजें शुरू हो गई। कौन है तेरा रब, कौन है तेरा रसूल, कौन है तेरा दीन, क्या ये हिसाब किताब शुरू नहीं हो गया? और क्या पता कि चंद सातों में, चंद लम्हों में ही ये मौत आने वाली हो, आप कयामत का इंतजार करते रहे, नहीं नहीं अभी तो ईसा अलैहि सलाम नहीं आए, नहीं अभी तो ये नहीं हुआ, नहीं अभी तो ये निशानी नहीं पूरी हुई, अभी तो कयामत बड़ी दूर है, तो आराम से बैठे यूं लगता है कि जैसे हमने हमेशा ही रहना, जब कयामत आएगी तो मरेंगे, नहीं हो सकता है कि कल ही मर जाए, आज शाम ही मर जाए, कल सुबह तक ना हो, फिर तो हो सकता है बहुत करीब ही हो। अल्लाह अकबर, तुम्हारी कयामत तुम कहते हो दूर है या तुम कहते हो कब आएगी, हो सकता है करीब हो, ये कह के इंसान को झंझोड़ दिया गया कि वो एकदम डर जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है एक दिन में है, दो दिन में है, साल में है, कब है। और अरबी का एक मुहावरा है कि जो चीज चल पड़ी है वो करीब ही है, यानी जो चीज वकूफ पजीर होने वाली है ना वो करीब ही है। अब आपको कहें कि ट्रेन वहां से चल पड़ी, समझ ले करीब ही है, बस आई कड़ी है, अभी जाए थोड़ी देर में, 1 घंटे में आए, 2 घंटे में आए, आ ही जानी है उसने। तो फिर क्यों इस चीज को इंसान डिले करे अमल को, और सोचे कि हाँ जब आएगी तो देखी जाएगी। यौम यदाउकुम, जिस दिन फिर वो पुकारेगा कुम तुमको, फतस्तजीबूना बिहम्दी। तो जब वो पुकारेगा ना, पुकारना मतलब क्या है, सूर फूंका जाएगा, वो एक पुकार होगी, एक जब सूर का एक नफखा फूंका जाएगा सब खत्म हो जाएंगे, सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। बाज जगह पे 2 नफखों की बात है, बाज पे 3 की बात है, एक बेहोशी का, एक मौत का, एक दोबारा खड़े होने का। बाज में है कि नहीं, 2 ही नुस्खे हैं, एक से मर जाएंगे, एक से दोबारा खड़े हो जाएंगे, एक से सब के सब तबाही हो जाएगी, एक से दोबारा जिंदगी होगी। इमाम शौकानी जो फतुल कदीर में इसी को तरजीह दी है कि 2 ही नुस्खे हैं, लेकिन अब इन 2 नुस्खों में कितना फासला है, कितना वक्फा है। बाज जगह पे आता है 40 साल का वक्फा है 2 नुस्खों के दरम्यान। अच्छा पहले ये बात कर लेते, ये औम यदाउकुम, जिस दिन वो पुकारेगा यानी जिस दिन सूर फूंका जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, क्या होगा? कोई ये कहेगा नहीं अभी तो मैंने सोए रहना है, जैसे अलार्म पे हम कहते हैं अलार्म अभी बंद कर दो, अभी तो बड़ी नींद आई हुई, अभी मुझे सोने दो, थोड़ी देर में उठती हूँ, बस 5 मिनट और दे दो। कोई ये नहीं कहेगा 5 मिनट और मुझे अभी सोने दो, अभी ही मेरे से उठा जाता, अभी अभी तो मैं मर रहा हूँ, या अब मैं मेरी तो अभी हिम्मत नहीं उठने की। नहीं, सब एकदम खड़े हो जाएंगे, कोई नहीं कह सकेगा अभी नहीं मैंने उठना, अभी मुझे सोना है, अभी नहीं मैंने जाना। और क्या करेंगे, बस वो बस तुम जवाब दोगे साथ उसकी हम्द के, उसकी हम्द के साथ, उसकी तारीफ के साथ, हम्द बयान करते हुए यानी उसका हुक्म मानते हुए, जिस सिमत में कहा जाएगा इस तरफ को चलो सब उस तरफ को चलेंगे। कोई ऐसा भी नहीं करेगा कि मैंने नहीं जाना, मुझे डर लगता है, यहाँ पे तो किसी को कहीं लेके जाना हो कितना मुश्किल होता है। आप हज उमरे पे चले जाएं, एक बस में ही 50 लोगों ने बैठना है, इतना मसला होता है, कोई किसी वक्त आ रहा है, कोई किसी वक्त, जितना मर्जी कह दो अपने टाइम की पाबंदी कर, नहीं आते, कोई लेट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, वहां पे कोई नहीं ऐसे कहेगा, कोई लेट नहीं होगा, एक आवाज के ऊपर सबने उठ के चल पड़ना, लब्बैक कहेंगे, अल्लाह अकबर। तुम क्या जानो कि वो वक्त जिसको तुम दूर समझ रहे हो सकता है वो करीब हो। और तब वतजुन्नुना इन लबिस्तुम इल्ला कलीला, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये दुनिया की जिंदगी का जो टाइम तुम्हें मिला था ये कितना कलील था। आज तो तुम्हें लग रहा है ना बड़ा टाइम है, बड़ा टाइम है, उस वक्त जब खड़े होगे ना तो फिर मुड़ के देखोगे तो लगेगा ये वक्त कितना थोड़ा था, इतना थोड़ा टाइम में रही, मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिला। ये आज हम कहते हैं पता नहीं अभी तो मैं 30 साल की हूं, अभी तो मेरे पास बड़ा टाइम है, अभी तो मैं 40 की हूं, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, ये आज की खुशफहमियां हैं। वहां पे देखना तो 100 साल की भी जिंदगी ऐसे लगेगी, ये तो क्या पलक झपकने में गुजर गई। लबिसना यौमन औ बादा यौम, हम तो ठहरे थे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, सिर्फ इतना सा लगेगा, यानी सारा जो टाइम दुनिया में भी गुजारा और जो बरजख में भी गुजारा वो मिला जुला के भी एक दिन का वक्फा, तो जरा सा टाइम लगेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली समंदर में डुबो के उस पे से फरमाया कि कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डुबो के और फिर निकालता है तो उसके ऊपर जो पानी लगा हुआ है ये दुनिया की जिंदगी है और ये समुंदर आखरत की जिंदगी है। वो सोचे आखरत की जिंदगी कितनी तवील है, कितनी तवील है, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं ना, आप सब इस चीज को जरूर मानेंगे मेरी बात को, कि कितनी जल्दी वक्त को सर रहा, अब वाकई वक्त पकड़ा ही नहीं जा रहा, समझ ही नहीं आती किस तरह दिन रात हफ्ते महीने साल ऐसे भागे जा रहे हैं, क्या हमें लगेगा। फिर भी हमारे बड़े भी मानते हैं, आज उनसे पूछें, किसी बड़ों से, अपनी दादी नानी वगैरह से आप बात करें, तो कहते हैं कि अब वक्त ज्यादा तेजी से गुजरा, उनके जमाने में ऐसा नहीं था। और ये कयामत की निशानियों में से हम उस दौर में आ गए हैं, इस दुनिया में आए हैं, जो कयामत के करीब का दौर है। वाकई कुल आसान ये कुना करीब है, कयामत करीब है, हम रहे नहीं रहे मगर कयामत करीब है, और उसकी निशानी है कि वक्त और तेजी से गुजरेगा। अब आप सोचे कि फिर क्या, हमें क्या लगेगा, वो तो फिर भी कोई 100 साल जी लेते थे, हमारी तो एवरेज लाइफ ही बहुत, लाइफ स्पैन आज इतना छोटा है, इतनी कम है जिंदगी, आज 100 तक तो कोई नहीं पहुंचता, 90 तक भी कोई पहुंच जाता लोग मुंह खोल लेते, अच्छा 90 साल का हो गया, इतना ज्यादा हमारे लिए रेयर हो गया आज 90 साल भी उम्र। तो बताएं कि हमें पीछे मुड़ के क्या लगेगा कि हम कितना जिए हैं, हमारी जिंदगी अगर 70 साल की भी हो जाती तो हमें क्या लगेगा, पलक झपकना बस। और बड़ी बड़ी उम्रों वाले भी कह रहे होंगे वहां पे कि लबिसना यौम नौबाद यौम, तो हम क्या कहेंगे, वाकई हमारी तो उनसे कंपैरिजन करें तो पलक झपकना ही, अभी तक की जिंदगी पलक झपकना लगती, वहां पे जाके क्या लगेगी, इतनी जल्दी ये गुजर जाने। अल्लाहु अकबर, इस एक बात के ऊपर ईमान हो ना, वह तजुन्नू ना, अल्लाह ताला खुद सच्चों से सच्चा बयान कर रहा है कि तुम्हें उस दिन ऐसा लगेगा कि हम बहुत थोड़ा रहे, नहीं रहे मगर बहुत थोड़ा, उससे ज्यादा सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। ये आज क्यों नहीं हम ये सोचते कि ये बहुत थोड़ा है मेरा कयाम, ये बहुत थोड़ा मेरा कयाम, और आगे का मेरा कयाम बहुत लंबा है जो कभी खत्म नहीं होगा, ये आज क्यों नहीं आता, क्यों नहीं इस चीज का यकीन आता, क्यों नहीं जनाजा देख के किसी का मुझे ये होता कि मैं भी एक दिन इसके ऊपर हूंगी, और ये दूर नहीं है, ये बड़ा कलील वक्त मेरे पास रह गया। हम में से अक्सरियत की आधी जिंदगी तो गुजर चुकी है, गुजार ली है हमने, आधी भी नहीं रह गई, फिर भी कितने मुतमईन है हम, फिर भी किसी को माफ करने में हमें कितना मुश्किल होता है, जबकि हमें पता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, पता ही नहीं ना, ये सिर्फ पढ़ने की बात है, पता नहीं है, यकीन यही है कि अभी बहुत रहना, आधी नहीं गुजरी अभी मेरी बड़ी पड़ी हुई है, यकीन ये है, मुंह से ये बोलते हैं कि हमारे पास वक्त कम है, हम मानने को ही तैयार नहीं, हम अपनी एज को देखते हैं ना, उसका नंबर कम कर देते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी उम्र बढ़ जाए, डिप्रेशन होने लगता है भाई उससे, तो अभी हम 20 साल के ही हैं, किसी ने कहा मैं तो 50 से ऊपर ही नहीं हुई, मैं अपने आप को 50 का ही समझती हूँ आज भी, अल्लाह जाने उनकी कितनी उम्र थी, लेकिन उन्होंने कहा बस मेरा वहीं पे वक्त हुआ, यानी अपने आप को हम धोखे में रखते हैं ना, हम मानना ही नहीं चाहते हमारी उम्र बढ़ रही है, अगर मानेंगे तो फिर हमें ये डर हो जाएगा अच्छा मेरा जाने का टाइम करीब आ गया, मैं बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ, तो कहीं मैं सीधी ना हो जाऊं, उल्टे ही चलना चाहते हैं ना, हाँ बस उसी में अपने आप को धोखे में रखे हुए, इल्यूजन, देखो इंसान क्या किसी और को धोखा देगा, कितना बेवकूफ है, अपने आप को ही धोखा देता है, अपनी उम्र ही नहीं मानता, क्योंकि मान लिया तो फिर सीधा होना पड़ेगा, फिर दिल में ख्याल आएगा मेरे पास वक्त कम रह गया, वो चाहता है कि मैं इस ख्वाब में रहूं कि बहुत वक्त पड़ा हुआ है, फरिश्ते ने तो नहीं आके तेरी एज पूछनी, उसने तो नहीं आगे कहना कि तेरे पास क्या कितना वक्त है, तुम अपने आप को कितनी एज की समझती हो, उसने तो कहना चलो अब। तो आज हमें लगता है बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, इसलिए किसी को माफ नहीं करते, इसीलिए लोगों के हकूक नहीं देते, इसीलिए रिश्तों की एक हमें कदर नहीं है, इसीलिए अपने अमल की फिक्र नहीं है, इसीलिए हम तौबा इस्तगफार नहीं करते, इसलिए हम गुनाहों से बचते नहीं, इसलिए हम नेकियों में बहुत तेज नहीं दौड़ रहे, क्योंकि हम रिलैक्स हैं ना, इसलिए कि हम ये नहीं मानते कि बहुत थोड़ा वक्त है, तो जिस दिन यही मान लेना इंसान के बड़ा थोड़ा वक्त है, देखना फिर कैसे भागता है। और मैं इसको साबित करूं इस बात से, देखिए, किसी को कह दिया जाए ना, डॉक्टर कह दे तेरे पास वक्त कम है, फिर देखना कितनी तेज भागता है, फिर इतना रोना आता है कि हाय मैंने कुछ नहीं किया, हाय मेरे पास, मुझे तो डॉक्टर ने कह दिया। डॉक्टर की बात पे यकीन है, अल्लाह ताला फरमा रहा है वो करीब ही है, उसकी बात पे नहीं यकीन। डॉक्टर की बात पे यकीन आ जाता है कि हाँ मौत आनी है, क्या जिसको डॉक्टर नहीं कहता उसकी मौत नहीं आनी होती? एक को डॉक्टर ने बता दिया तो उसकी आ जानी है, और बाकी हम सारे बेफिक्र हैं और उसके लिए रो रहे हैं। अरे इस बेचारे को कह दिया कि इसके पास वक्त कम है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, उसके ऊपर रो रहे हैं, और अपने हाल क्या है? मुझे तो अल्लाह ताला ने बता दिया, कुल्लू नफ्से जायकतुल मौत, उस पे नहीं यकीन। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, वकुल्ली इबादी, और कह दीजिए मेरे बंदों को, यकूल उल्लती ही आसन, कहें वो बात जो ज्यादा अच्छी हो, अच्छी बात कहें। ये किसको कहा जा रहा है? देखिए ये हर कॉन्टेक्स्ट में है। सबसे पहले तो ये बात है कि ये हजरत उमर जो थे वो एक दफा किसी से बात कर रहे थे, तो जब बात हुई दीन ईमान के ऊपर तो उस काफिर के साथ तलखी हो गई, और उमर चूंकि तबाना थे तो जुबानी तक बात नहीं रही बल्कि इससे भी आगे बढ़ गई, गुत्थम गुत्था हो गए और मुखालिफ को पिछाड़ दिया। तो अब ये आयत नाजिल हुई कि जो क्योंकि मुसलमान जो थे इस कदर उस माशरे में उनको दबाया जा रहा था, उनको हर तरह से प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, उनकी मुखालफत इतनी थी, और एक वक्त आ जाता है ना इंसान के रवैये में उसका इजहार होने लगता है, जाहिर है इतनी तलखी, इतनी तुर्शी, क्या क्या नहीं उनके साथ हो रहा था। तब भी अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि नहीं, आपको आसानी बात करनी, जब आपको दावत देनी है ना, तो हमने सूरह नहल में भी पढ़ा ना, बिल हिकमती वल मौइज़ा दिया, हिकमत के साथ दिल को नरम करने वाली बात करनी, ऐसे नहीं कि बहस मुबासा, ऐसे नहीं कि तलखी हो जाए, ऐसे नहीं कि आप अपने आस्तीने चढ़ाने लगे, ऐसे नहीं कि गुस्से में नथने फूलने लगे, आज तो मैंने इसको बता के रखना है ये कैसे, और भड़क रहे हैं और एक शोर मचा हुआ है। अक्सर ऐसे ही एंड अप होती है ना, उसके बाद एक का मुंह एक तरफ, एक का दूसरी तरफ, एक दूसरे से बात करने से भी जाते हैं, ये अच्छी तबलीग हो रही है, इतने फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो ये नहीं करना, उस वक्त भी आसन बात करनी है। दूसरा इसके अंदर ये है कि सहाबा तंग आ चुके थे मुशरिकीन के रवैये से, तो वो इजाजत मांग रहे थे कि हमें इजाजत दें कि हम भी इनके साथ जरा दो दो हाथ करें, हम भी इनका मुकाबला जरा करें, एक हद है ना कि इनकी बात सुनने की भी, जब ताकत है कुव्वत है हम क्यों ना इनको जवाब दें। तो उनको कहा गया नहीं, अभी नहीं, आपको इजाजत है, ठीक है। तीसरी बात एक और भी इसके अंदर है, देखिए कितने मफाहीम है ना जो मुफस्सिरीन ने एक ही आयत में कितनी बातें इससे अखज होती हैं। तीसरी बात इमाम कुर्तुबी और तबरी ने लिखा है कि इस आयत का मफहूम यह है कि आसन बात करो, और आसन बात तौहीद है, तो तौहीद को मौजू बनाओ, यानी कि सारी दुनिया के मौजूआत कर लें आप जी, मुस्कुरा के लोगों से मिलें, हमसाए का ख्याल रखें, आप इंसानियत की खिदमत करें, वो सारी बातें हो रही हैं, बड़े लेक्चर हो रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन तौहीद पे आना ही नहीं, तौहीद के मौजू को नहीं छेड़ते, कहते नहीं नहीं इससे लड़ाई पड़ती है, इसको ना छेड़ो, तौहीद ही तो बेसिक चीज है, सारे अंबिया ने इसी के ऊपर तो अपना जो नुकता आगाज बनाया ना, जो अपनी बिगिनिंग का जो सबसे पहला जो पॉइंट बनाया और जो बेस बनाई वो तौहीद ही तो थी, उसके ऊपर नहीं बात करनी, और वो ही आसन बात है, सबसे भली बात। चौथी इसके अंदर बात ये है कि जब ये बात तो कि हाँ, जब आप वो इमाम शौकानी ने ये लिखा है कि जब मुसलमान आपस में भी एक दूसरे के साथ मामलात करें तो अपने ताल्लुकात को बेहतरीन रखें, बेहतरीन बात करें एक दूसरे के साथ, झगड़ों में ना पड़े, एक दूसरे की मुखालफत में ना पड़े, कयामत तक के लिए देखें ये हिदायत दे दी गई कि हालात जितने भी खराब हो आपस में आपने जुड़ के रहना है, अपने ताल्लुकात खराब नहीं होने देना। और उसके लिए क्या करें, अच्छी बात करें, क्योंकि जुबान से ही तो बात शुरू होती है। ताल्लुकात की खराबी कहाँ से शुरू होती है, जब इंसान की जुबान से तलख बातें निकलती, जुबान से ऐसे कोई बात निकल जाती कि इसको कहते हैं ना कि तीर का घाव जो है वो उसका जो जख्म है वो फिर भी भर जाता है, लेकिन जुबान का जो जख्म है ना वो नहीं भरता। तो मुसलमानों के ताल्लुकात आपस में, चाहे दोस्तों के, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे बड़े लेवल पे आके कौमी लेवल पे उम्मत के लेवल पे आ जाए, छोटे से घर के यूनिट से अगर आप ले लें, मियां बीवी के ताल्लुकात हैं, वालदैन और बच्चों के ताल्लुकात हैं, ससुराली रिश्तों के ताल्लुकात हैं, या बड़े लेवल पे ले लें उम्मत के ताल्लुकात हैं, या आपस में कौम के या फिरकों के आपस में ताल्लुकात हैं, कोई नस्ली कोई इलाकाई उसके अंदर ताल्लुकात आपके आपस में है, उनमें भी आसन बात करनी है। आसन बात, आप दोस्तों में बैठे हुए हैं, कई दफा ऐसी मैं देखती हूँ कि मजलिसें होती हैं जिसके अंदर कोई एक बंदा ऐसी कोई बात दूसरे को कह देता है ना कि दूसरा एकदम बुझ सा जाता है, वो हर्ट हो जाता है। अब इसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो आपके लिए बड़े अच्छे अपने दिल में जज्बात रहे, वो चाहे आपको कुछ भी ना कहे, आपने उसका मजाक उड़ा दिया वहां पे, या उसके ऊपर कोई तंज कर दिया, या जिसको हम कहते हैं ना लूज टॉक, डोंट डू लूज टॉक, बी वेरी केयरफुल। क्यों? इन शैतान यंजहु बैनहुम, इसलिए कि शैतान जो है ना फसाद डलवाता है। जब आप लूज टॉक करते हैं ना, मुंह बस खोला हुआ है, जो मर्जी बड़बड़ बड़ बोलते ही जा रहे हैं, कुछ सोच के तो बोलो किसी को क्या कह रहे हैं। जब आप ऐसी कोई बात मुंह से निकालते हैं जिससे दूसरे का किसी तरह भी वो दूसरे को अच्छी नहीं लगती, आप उसके बारे में आपने कोई बात ऐसी कह दी, चाहे उसकी जुबान के बारे में कह दी, उसके लिबास के, उसकी अपियरेंस के, उसके वो जिस कौम से ताल्लुक रखता है उसके बारे में, किसी बारे में आपने बुराई की बात कह दी, तो उसके बाद आपके ताल्लुकात वो नहीं रहेंगे। आप देखेंगे ये बातें ही हैं जिनसे इंसान या तो ताल्लुकात अच्छे रख सकता है या बुरे रख सकता है। जब आपने किसी को दावत भी देनी है दीन की, उसमें भी बदजुबानी पे नहीं उतर आना, वो भी आसान तरीके से, उसमें भी दूसरे को फ्लेयर अप नहीं करना कि दूसरे को गुस्सा दिलाएं, आप उसको ऐसी ऐसी बातें करें कि उसको गुस्सा। इसीलिए आप देखें ना कि यहाँ पे कुरान पाक में सूरह अनाम में आप देखेंगे वहां पे भी है कि इनके जो झूठे माबूद है ना, जिनको ये अल्लाह के सिवा पूजते हैं, उनको भी गाली ना दो, उनको भी बुरा भला ना कहो, इसलिए कि वो भी तुम्हारे खुदा को फिर गाली देंगे, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ना, इसलिए कि तू देखो उनके तो है ही झूठे, लेकिन अल्लाह के बारे में ऐसी बात तुमने उनके मुंह से निकलवाई, तुम्हारी वजह से निकली, तो ये नहीं करना। दावत का मैदान हो, आपस के ताल्लुकात हो, घर के ताल्लुकात हो, इंडिविजुअल लेवल के ताल्लुकात हो, फैमिली के ताल्लुकात हो, या कौम के ताल्लुकात हो, हर जगह पे आसन बात, हर जगह पे अच्छे तरीके की बात। आसन बात के अंदर सच्ची बात भी है, अच्छी बात भी है, तरीका भी अच्छा होना चाहिए। वकूलु लिन्नासी हुस्ना, हम सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं, लोगों के साथ अच्छे तरीके से साथ बात करो, कलिमात भी अच्छे हों, मौजू भी अच्छे हों, गंदी बातें ना हो, स्टाइल गंदा ना हो, बुरा तरीका ना हो। बाज दफा हम बात तो बड़े अच्छे तरीके के साथ करते हैं, लेकिन उस बात में इतनी चुभन होती है कि दूसरे का दिल छलनी कर देती है वो बात, कहते हैं हमने क्या कहा, मैं तो बड़े आराम से इसको ऐसी लगाई ना, ऐसी लगाई, वैसी लगाई, आप खुद कह रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है यकूल उल्लती या आसन, आसन बात करो, वो आसन तो नहीं रही। और हम उसको अच्छी रैपिंग में अगर कड़वी गोली को डाल के दे देते हैं, रहती तो कड़वी ही है। तो किसी जगह पर भी आप अगर इस एक बात पे अमल करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपकी दावत देने में भी तासीर होगी। आप इसी वजह से तो लोग बाज दफा शिकायत करते हैं जी, दीन वाले उन्होंने ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया, अब मैंने मस्जिद नहीं जाना, अब मैंने, क्योंकि तरीका लोगों से बात करने का इतना रूड होता है, या बिहेवियर में ऐसी बात होती है, या बात ऐसी होती है कि दूसरी को इतना हर्ट करती है कि वो मस्जिद जाने से हट गए, या उस महफिल में जाने से हट गए जो दीन की थी, या वो उस काम से और ज्यादा वो उनकी अना जाग गई और उसके ऊपर और ज्यादा सख्त हो गए, जो गलत काम वो कर रहे थे आपने तरीका ऐसा अपनाया उनको मना करने का, तो इससे फायदा नहीं होता, नुकसान होता उल्टा। इसी तरह जो आपस के ताल्लुकात है उनमें भी, क्योंकि शैतान जो है ना वो बैठा हुआ ताल्लुकात को खराब करने के। जब इंसान बात आसन नहीं करेगा ना, तो उसको मौका मिल जाता है अब बीच में फसाद डलाने का। इन्ना शैतान वो तो है ही काना लिन इंसान या अदुवा मुबीना, वो तो है ही इंसान का खुला दुश्मन। अब जब आपने आसन बात नहीं की तो उसको एक ओपनिंग दे दी, अब वो आके फिर वैसा फसाद खड़ा करेगा, उसको मौका ना दे कि वो फसाद डलवाए। आज हमें शौक तो बहुत है ये कहने का, हाय उम्मत मुस्लिमा एक हो जाए फिर देखो कैसा हो, लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने क्या एक होना, हम जिस लेवल पे है हम वहां पे भी एक नहीं होते, अपने इलाके अपने मोहल्ले अपनी जगह पे, वहां पे ही हमारे दिलों में कीने, इसको इस साथ ताल्लुक खराब, उसके साथ ताल्लुक, उसको ये कह दिया, उस तलख कलामियां, बात अच्छे तरीके से तो हम भी नहीं करते। जबकि आपसे सलम ने क्या फरमाया, ये अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ, तो हमने खुद तो इसके ऊपर अमल नहीं किया, उम्मत के लेवल पे तो बात की बात है। रब्बुकुम आलमु बिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारा रब है वो खूब जानता है तुमको, इयशा यरहमकुम और इयशा युआद्दिबकुम, वो अगर चाहे तो रहम करे तुम पर और चाहे तो अजाब दे तुम्हें, अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता है। अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में भी फरमाया, ला यालमु मन खलक, क्या वो ही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया तुम्हें, और सिर्फ पैदा ही नहीं किया, वो लतीफुल खबीर, वो तो बड़ा बारीक बीन भी है बाखबर भी है, तो वो कैसे नहीं जानेगा, वो जानता है तो इसके रवैये क्या हैं, कौन क्या बातें करता है, दीन के मामले में भी जो कोई बात भी की जाती है उसको भी जानता है। तो अब इसका मतलब हमें कोई कितना भी इंस्टिगेट करे उभारे इस बात के ऊपर कि हम कोई गलत बात करें, लेकिन हमने जज्बात में आके आपे से बाहर नहीं हो जाना, और फिर ये नहीं कहना नहीं इसने ही मुझे गुस्सा दिलाया था, ये नहीं करना, क्योंकि उसने गुस्सा दिलाया था या नहीं दिलाया था उसकी वो बात उसके साथ है, हमने जो काम किया वो हमारे साथ है, हम उसके ऊपर इल्जाम थोप के खुद बरी जिम्मा नहीं हो सकते। ये यशा यार हमको अल्लाह ताला चाहे तो वो रहम करे और चाहे तो अजाब दे, ये किस बारे में, इससे कुम से मुराद कौन है, इसके तीन मफहूम बताए हैं मुफसरीन ने। पहला ये कि ये अमूमी तौर पर सारी इंसानियत है, चाहे मुसलमान है या काफिर है, अल्लाह ताला जिसको चाहे अजाब दे जिसको चाहे रहम करे। दूसरा माना ये कि मुशरिकीन मक्का हो सकते हैं, अल्लाह ताला खूब जानता है कि वो क्या रवैया अपना रहे हैं, लिहाजा अल्लाह ताला चाहे तो उन पर रहम करे कि उनको इस्लाम की तौफीक दे दे और उनको फिर बख्श दे, और चाहे तो उन पे अजाब करे कि उनसे तौफीक छीन ले। और तीसरा यह कि अहले ईमान को खिताब है, यहां रहम की बात यह है कि चाहे तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला रहम नाजिल करे और तुम्हें गलबा अता फरमा दे इस माहौल में भी जहां पे कुफर है हर तरफ, और ये अजाब में मुतला करे कि काफरों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दे, तो ये अजाब भी की एक शक्ल हो गई। हमा अरसलना का अलैहिम वकीला, और नहीं भेजा हमने आपको इन पे दारोगा। इस जुमले से पता चल रहा है कि ज्यादातर यहाँ पे ये है कि ये कुफारे मक्का की बात हो रही है, जिनके साथ मुसलमानों का इंटरेक्शन चल रहा था ना, और मुसलमानों को चाह रहे थे कि उनको कुछ यानी इनके ऊपर कुछ उनको कोई इख्तियार दिया जाए, उनको इजाजत दे दी जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करेंगे जब इनको बताएंगे तो इनसे इनके आगे ऐसे रवैये भी होंगे, मुखालफत वाले भी होंगे, नहीं भी मानेंगे, गुस्सा भी दिलाएंगे, बुरी बातें भी करेंगे, प्रोपोगेंडाज भी करेंगे, तो आप इनके ऊपर वकील नहीं है, आप इनके ऊपर दारोगा नहीं है, आपसे ये नहीं पूछा जाना कि ये क्यों नहीं मुसलमान हुए, हाँ आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि आपने आसान तरीके से दावत दी थी या नहीं, याद रखिए ठीक है। ये नहीं पूछा जाना कितने आपने जिंदगी में मुसलमान किया लोगों को, कितने लोग आपके हाथ पे इस्लाम लेकर आए, शहादा लिए, ये जरूर पूछा जाएगा आपने कितने लोगों को आसन तरीके से दावत दी है, दावत नहीं सिर्फ आसन तरीके से। और रब्बू का आलम हो बिमन फिस समावाती वलात, और रब तेरा खूब जानता है जो भी आसमानों में और जमीन में है, वो गाफिल नहीं, वो उसको नींद नहीं, ऊंग नहीं, मखलूक से वो बेखबर नहीं है, वो खूब जानता है सारी मखलूक को जो आसमानों में और जो जमीन में, एक को देखना उसको दूसरे से गाफिल नहीं करता, वो जानता है मखलूक में कौन है जो ईमान लाने वाला है, कौन है जो नहीं ईमान लाएगा, किसकी क्या फजीलत है, कौन नेकियां करने वाला है, किसमें खूबियां ज्यादा है, किसमें खराबियां क्या है, उसके अंदर सलाहियत कितनी है, किसकी मजबूरियां क्या हैं, किसकी मजबूरियां नहीं है और सिर्फ बहाने हैं, किसकी अखलाक क्या है। वलकद फद्दलना बाद नबीन आला बाद आतीना दाऊदा जबूरा, और खास तौर पे यहाँ पे इसलिए कहा गया कि मुशरिकीन ने मक्का ये एतराज करते थे कि अगर नबूवत मिलनी थी तो किसी बड़े को मिलती, जो ताइफ का कोई सरदार होता, इनको क्यों मिल गई। अल्लाह ताला को बेहतर पता है आसमानों में जमीन में कौन उसकी मखलूक किस काबिल है, वो जानता है किसको उसने नबुवत के लिए चुनना है, किसको उसने अपने दीन की खिदमत के लिए चुनना है। बंदों को नहीं पता होता, मूसा अलैहिस्सलाम को चुना हालांकि उनकी जुबान में लुकनत थी, हारून अलैहिस्सलाम बड़े थे, उनकी जुबान साफ थी, फिर भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को चुना। हारून को अलैहिस्सलाम को तो बाद में उनकी दुआ पे चुना ना, पहले नहीं हारून अलैहिस्सलाम को चुना गया, अल्लाह ताला को बेहतर पता है। वो कहते थे ये यतीम है, ये कोई सरदारी इनके पास नहीं, इनको क्यों, तुम्हें क्या पता, अल्लाह को पता है। तो किससे अल्लाह ने काम लेना है ना, ये फैसले हमने नहीं करने, क्योंकि उसके पास वो सिर्फ तो इतना पड़ा हुआ, असल तो उसके पास होना चाहिए ये काम, उसको तो करना चाहिए। उनको तो बड़ा अजीब लगता था, अल्लाह ताला ने इसका जवाब दे दिया। और फजीलत दी बाज को बाज नबियों पर, देखें अब नबियों में बाज को बाज पे फजीलत दी, हमारा काम नहीं है कि हम किसी लोगों को जाकर कहेंगे हमारे नबी की तुम्हारे नबी पे ज्यादा फजीलत है और ऐसे, और उसके ऊपर लड़ाई शुरू कर दे, लेकिन हमें कुरान बताता है कि फजीलतें हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। और हम जानते हैं कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पे फजीलत हासिल है, खैरुल बशर थे, इमामुल अंबिया थे, उनको अल्लाह ताला ने मेराज कराई, उनके अगले पिछले सारी लग्जिशें माफ थी, तो किसी को कोई फजीलत दी, किसी को कोई फजीलत दी, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को खलीलुल्लाह बनाया, किसी को हबीबुल्लाह बनाया, अल्लाह ताला की जैसे चाहत, जैसे उसने समझा वैसे ही किया, इसमें लोगों के मशवरे की जरूरत नहीं। वह आतीना दाऊदा जबूरा, और दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर दी, खास तौर पे दाऊद अलैहिस्सलाम का जो जिक्र यहाँ पे आया, इसमें मुफसरी ने डिफरेंट बातें लिखी हुई है, एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि दाऊद अलैहिस्सलाम का कद छोटा था लेकिन अल्लाह ताला ने उनको रसूल बनाया, तो तुम्हारे मशवरे नहीं, अल्लाह ताला जिसको चाहता है नबूवत अता फरमाता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चुना। और हाँ, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी आता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को जिहाद की का हुक्म दिया गया, तो दोनों में ये मुश्तरक बात है। और भी कई चीजें हैं जो उनको जबूर में बताई गई, और वो सबसे पहले ये भी आता है कि सबसे पहले जबूर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आपकी तशरीफ आवरी के बारे में बात बताई गई है, जबूर में सबसे पहले ये शवाहिद मिलते हैं। तो बताना ये कि वही जात है जिसने दाऊद अलैहिस्सलाम पे भी जबूर नाजिल की, कुल अद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनी, कह दीजिए तुम पुकारो उनको जिनको तुम गुमान करते हो ना अल्लाह के सिवा, क्या गुमान करते हो कि ये भी कोई इख्तियार रखते हैं, ये भी खुदा है, इनके पास भी पावर्स हैं, जिनको भी तुम गुमान करते हो कि भाई ये हमें कुछ दे सकते हैं, हमारा रिस्क बढ़ा सकते हैं, या तुम्हें समझ आती है कि ये मेरे मसलों को हल करा देंगे, यहाँ पे मैं जाऊंगी धागा बांधूंगी, ये होगी वो होगी, फला यमलिकुना कशफ दुर्र अनकुम वला तहवीला, तो नहीं वो मालिक हो सकते तकलीफ हटाने के तुमसे और ना बदलने की। वो हटा भी नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते। बदलना मतलब ये कि उसमें कोई कमी कर दें, तकलीफ में कुछ कर दें, कुछ भी नहीं कर सकते। वो कोई मालिक नहीं किसी चीज के भी। तुम पुकार के देख लो इनको, चाहे वो पत्थर के बोते हैं जिनके पीछे भी तो अकीदा था ना कि ये भी कोई हस्तियां हैं, ऐसे नहीं है। वो इतने पागल तो नहीं थे कि वो पत्थरों के ही आगे झुकने शुरू हो जाते। उन्होंने पीछे कॉन्सेप्ट तो था ना ये कि कोई नेक लोग हैं जिनका जो बड़े अल्लाह के हाँ जिसको हम कहते हैं पहुंचे हुए हैं, तो इसलिए हम इनको मानते, या ईसा अलैहि सलाम है या फरिश्ते हैं या कोई भी गैर उल्ला, हर एक की नफी कर दी गई कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। हत्ता के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कुरान पाक में ये बात है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया नबी आप कह दें कि अगर मैं मालिक होता किसी नफे ना ना नुकसान का तो मैं अपने लिए खैर ही सारी रख लेता और मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुंचता। तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के क्या और कोई हो सकता है कि जिसके हाथ में फिर कुछ होता। अगर कुरान में ये बात है उनके लिए तो किसी और से हम कैसे समझ सकते हैं कि इसके हाथ में कुछ मेरी तकलीफ हटाने का कुछ इख्तियार है। अल्लाह अकबर। उलाइक अल्लदीन यदउना, यही वो लोग हैं जिनको वो पुकारते हैं। ये बताहूना इला रब्बिहिम अलवसीलता अय्युहुम अक़रब, ये वो लोग हैं जिनको वो पुकारते हैं, वो तो खुद तलाश करते हैं अपने रब की तरफ वसीला के कौन सा उनमें करीबता है। यानी जिनको ये पुकारते हैं वो हस्तियां तो खुद वसीला तलाश करती हैं, वो हस्तियां खुद अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश करती हैं। यानी जिनको भी ये पुकारते हैं, जाहिर है वो जो नेक लोग हैं जिनको ये कहते हैं पहुंचे हुए लोग हैं अल्लाह के हाँ, वो तो खुद अपने रब के नजदीकी की तलाश में रहते हैं कि उनमें से कौन ज्यादा नजदीक हो जाए। अय्युहुम अक़रब, के कौन ज्यादा नजदीक हो जाए। हम देखते हैं नबी अलैहिस्सलाम कैसे रातों को खड़े होके नमाज पढ़ा करते थे कि आपके पैर मुबारक सूज जाते थे खड़े हो के, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अगले पिछले सब माफ है। अच्छा यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि वसीला, वसीला का मतलब क्या है। वसीला का मतलब है कुर्ब। अब वसीला हम उर्दू में समझते हैं, उर्दू वाला वसीला ना इसको समझे कि वसीला रास्ता, यानी जो भी रास्ता हम अपनाते हैं किसी तक पहुंचने का, क्योंकि हमने ये जब कॉन्सेप्ट समझा तो हमने कहा फलाने को वसीला बना लो, फलां को वसीला बना लो। वसीला वो है जो अल्लाह ताला से करीब होने वाले आमाल हैं, इसमें सारे नेक आमाल आ जाते हैं। तो जिनको भी तुम पुकारते हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे नबी हो, चाहे बुजुर्गों औलिया अल्लाह, कोई जिन हो, कोई कुछ भी हो, वो भी अल्लाह ताला की तरफ वसीले की तलाश में रहते हैं कि अल्लाह के कुर्ब उनको हासिल हो जाए और कौन उनमें ज्यादा करीब हो जाए। फरिश्ते तक अल्लाह की तस्बीह करते हैं, फरिश्ते तक अल्लाह से डरते हैं, यरजूना रहमतहू, वो उम्मीद रखते हैं उसकी रहमत की, वह यखाफूना अदाबहू, और वो उसके अजाबों से डरते हैं। यानी जितने भी ये नेक लोग हैं ना, ये जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको वो वाले नहीं जो ये स्वामी रामी पता नहीं क्या क्या इन्होंने बनाए हुए हैं, वो तो खुद भटके में है, जो भी पैगंबरों को जैसे बनाया हुआ है या फरिश्तों को बनाया, वो तो खुद अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं अपने बारे में भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, हाँ और मैं भी जन्नत में अल्लाह की रहमत से ही जा सकता हूँ। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि मेरे तो काम इतने हैं, मेरे तो मैं तो नबी हूं, मैं तो जन्नत में जाऊंगा ही जाऊंगा, अब तुम लोगों का नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होता है, लेकिन मैं तो जाहिर है जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा। ये नहीं फरमाया, हदीस में है कि आप ससुर ने फरमाया मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, और मेरे फरमाया कि मेरे लिए वसीला की दुआ करो, वो एक मकाम है अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत में जो सिर्फ एक शख्स को मिलेगा। फरमाया मेरे लिए दुआ करो, हम कहते हैं वो फरमाते हैं मेरे लिए दुआ करो वसीले की, और इसीलिए हम अजान होती है तो उसके बाद दुआ करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकामा महमूद की और वसीला की। तो फिर हम कहते हैं हम उनको वसीला बना ले। वसीला मतलब है कि हम नेक वो अमाल करते थे ताकि अल्लाह के करीब हो जाएं, वो तो खुद वसीला तलाश करते थे, तुमने उनको वसीला बना लिया। वो तो खुद नेक अमाल की तलाश में रहते थे, तुमने इसका कोई और ही मतलब ले लिया। तो जो रसूल है, जो अल्लाह के ऑलरेडी इतने करीब होते हैं, वो भी और मजीद कुर्बत की तलाश में रहते, मगर हमने उनका दामन पकड़ लिया। हम तो करीब हैं भी नहीं, तो हम कह रहे हैं कि हम इनका दामन पकड़ लेते हैं, बजाय कि हम भी करीब होने के लिए नेक अमाल करें, बजाय हम भी अल्लाह ताला को पुकारे नेक अमाल करके और अल्लाह ताला तक कुर्बत का रास्ता इख्तियार करें। जिनको ये पुकारते हैं उनकी हालत बताई गई, ये उनकी हालत है, ये तीन काम उनके बताए गए कि जब वो दुनिया में थे ना, तो वो खुद अल्लाह के करीब होने के लिए नेक अमाल की तरफ दौड़ते थे, वो खुद अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखते थे, वो खुद अल्लाह के अजाबों से डरते थे। इवन फरिश्ते अल्लाह के अजाबों से डरते, जबकि उनके तो कोई उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना। अब आपसे सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जिनके कंधे अल्लाह के डर से कांपते रहते हैं, अर्श के उठाने वाले फरिश्ते अल्लाह से डरते हैं, और कहते हैं अल्लाह तू पाक है, जैसे तुझसे डरने का हक है वैसे हम वैसे नहीं डरा जाता हमसे जैसे डरना चाहिए। हालांकि वो इतना डरते हैं, मेराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था, वो अल्लाह के डर की वजह से पुरानी मश की तरह हो गए थे, लेदर बैग की तरह, जैसे जैसे सुकड़ सा जाता है। जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है तो फरिश्ते सजदे में पड़ जाते हैं, वही ऊपर से आता है ना अल्लाह का हुक्म, तो फरिश्ते सजदे में पड़ जाते हैं, लरजते हैं, कांपने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को जानने वाला हूँ, उसकी यानी अजमत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा और कौन जानता था, फरमाया मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ। अपनी बेटी को फरमाया, अपनी पप्पी को फरमाया कि तुम दुनिया में मेरे से कुछ ले लो, लेकिन मैं आखिरत में मैं तुम्हारे कुछ काम आने वाला नहीं। वो खुद इतना डरते थे, क्योंकि ना अजाब रब्बी का कहा ना महदूरा, अल्लाह ताला का अजाब है ही इस लायक के उसमें डरा जाए। हम कितने बेखौफ है ना, हम कहते हैं ना डराओ ना हमें, हालांकि कुरान कहता है अल्लाह का अजाब इस लायक है कि उसे डरना चाहिए, लोगों को डरना चाहिए इससे, लेकिन हमारे अंदर कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। और वो जितना जिनको हम पहुंची भी हस्तियां समझते वो डरते थे, वो अल्लाह ताला के करीब होने के लिए वसीला तलाश करते थे। अब वसीले से यहां पे बात पता चलती है कि हमें वो वाला जो वसीला बताया जाता है जी फलाने के वसीले से मांग लो, फलाने के वसीले से मांग लो, वो वसीला नहीं है। वसीला तो हमें जो हदीस में बताया गया, वसीला तो वही होगा ना जो हमें बताया गया, वसीला वही चीज काम वाली होगी जो हमारे नबी ने बता दी। खुद ही बता देना कि वसीला ये है वसीला वो है, ये तो सही नहीं है। जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी और क्या बता दिया वो हमें, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउ बिया, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना है उससे अल्लाह ताला को पुकारो, ये है वास्ता देना, ये है वसीला लेना उसके नामों के जरिए। फिर नंबर टू ये अपने नेक अमाल का वास्ता, तो उनको वसीला बनाओ, जैसे वो गार वाले लोगों ने बनाया था, हदीस में मौजूद है, इसकी दलील मौजूद है, ये गार वालों के किस्से से उन्होंने अपनी नेकियों का वास्ता दिया था अल्लाह को, इनको वसीला बनाया था अल्लाह ताला, तुझे मेरी ये नेकी अगर पसंद आई हो तो अल्लाह ताला तू इस पत्थर को हटा दे। उन्हें ये तो नहीं कहा था फलाने की नेकी जो फलाने बुजुर्ग ने की है, वो बुजुर्ग इतने नेक है तो उनके सदके हमारा ये काम कर दे, उनके वसीले हमारा ये काम कर दे, मैं तो जो उनका वास्ता देता। ओ भाई उनकी नेकियां उनके साथ हैं, वो अपनी नेकियों का वास्ता देते, आप अपनी का देंगे। आप ये कहेंगे मेरा कोई नेक अमल, अल्लाह मैंने ये रोजा रखा, या अल्लाह मैंने ये कयाम किया, या अल्लाह मेरी जो मोहब्बत तेरे रसूल के लिए है ये मेरे अमल है ना, आप अपने अमलों को वास्ता बना सकते हैं। इसी तरह नंबर थ्री, ये किसी भी नेक आदमी है जो मुत्तकी आप जिसको समझते हैं, उसको आप दरख्वास्त कर सकते हैं जिंदा को कि मेरे लिए दुआ कर दें। दुआए सालहीन एक जायज किस्म है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी सहाबा आते थे और कहते थे कि हमारे लिए दुआ करें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो उन्होंने जाकर कब्र पे नहीं दुआ मांगी, कब्र पे जाकर खड़ा नहीं होकर कहा कि हम हमें आपके वसीले से, वो फिर अल्लाह से मांगते थे या फिर जब बारिश की दुआ करनी थी तो हजरत उमर ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास को वसीला बनाया, उनकी दुआ को वसीला बनाया कि अब आप दुआ करें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे उनसे हम दुआ के लिए कहते थे, अब आपको हम कहते हैं। यानी नेक और साले अपने से ज्यादा आप जिसको समझते हैं, आप समझते हैं कि ये अल्लाह ताला के हाँ एक बड़ी नेकियां करने वाला आदमी है, तो उसको आप दुआ के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पे कि आप जो दुनिया से जा चुके हैं उनको वसीला बना, जबकि हम तो देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला समी और बसीर है, अल्लाह सबकी सुनता है। हमें ये वाला किसी इंसान को बीच में डालने की जरूरत ही नहीं कि हम हमारी आपकी आगे आपकी अल्लाह के आगे। ये होता है कॉन्सेप्ट, जब उनको नहीं कह रहे होते कि कहते हम इनसे तो नहीं मांगते, हम तो कह रहे हैं हमारी आपके आगे आपकी अल्लाह के आगे। ये इसकी जरूरत ही नहीं, जो वसीले के हमें बताया था वही हम करें। आप देखें सुभान अल्लाह, सहाबा कैसा ईमान था। उस सहाबी के बारे में आता है ना, अबू मुगला नामी जो सहाबी है, उनके बारे में आता है ना, डाकू ने उनको पकड़ लिया, उनसे माल छीन लिया। उन्होंने कहा माल मेरे से ले लो लेकिन मेरी जान बख्श दो, मेरी जान छोड़ दो। उसने कहा जब माल तो मैंने ले ही लिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम जाके शहर में मेरी शिकायत लगाओगे, वहां से फरकारे आके मुझे पकड़ के ले जाएंगे, तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा फिर एक काम मुझे करने दो, मुझे दो सजदे करने की इजाजत दे दो। उसने कहा ठीक है कर लो। सजदे में गए हैं, या मुगीथु अगिथनी, या मुगीथु अगिथनी, या मुगीथु अगिथनी, ए फरियाद रस मेरी फरियाद रसी कर, मेरी फरियाद रसी कर, ए फरियाद रस मेरी। हमने तो गौस किसी और को बनाया है ना, गौस तो अल्लाह ताला है। हम कहते हैं गौस ए आजम सबसे बड़ा फरियाद रस, फरियाद सुनने वाला, फरियाद पूरी करने वाले तो इनको बनाया हुआ है, अब्दुल कादिर जीलानी को रहमतुल्लाह अलैह। उनका अकीदा तो ये नहीं था ना, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं ये कहते थे कि वो गौस है। हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मती को गौस बना दिया, तो गौस तो अल्लाह ही है। तो या मुगीस अगिसनी, ए गौस तू, ए फरियाद रस तू मेरी फरियाद रसी कर। यहाँ ये पुकार रहे हैं और सर उठाया सद्दे से, तो देखा तो डाकू जो है ना वो मरा पड़ा, और पास एक नौजवान खड़ा हुआ, पूछा तुम कौन हो? कहा कि मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं। जब तुमने पहली दफा कहा या मुगीसु अगिसनी, तो अल्लाह ताला ने इस पुकार को बुलंद किया आसमानों तक और फरिश्तों में खलबली मच गई, और हर फरिश्ता ये कह रहा था कि अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं जाऊं और मैं जाके इसकी मदद करूं। हर फरिश्ता ये पुकार रहा था, अल्लाह अगर तूने इसकी मदद करने का फैसला किया, इरादा किया, तो अल्लाह मुझे इजाजत दे। तो अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया, तो मैंने इस डाकू को ढेर कर दिया। देख लेना इंसान की जो सच्चे दिल से दुआ होती है वो कहां तक पहुंचती है। फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। वो बात हमारे अंदर अगर आ जाए ना ये ईमान, तो आज भी फरिश्ते उतर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं अल्लाह तो बड़ी दूर है और हम उसको कैसे पुकारे, हम तो वसीला जब तक नहीं बनाएंगे। देखो सीढ़ी चाहिए होती है किसी तक पहुंचने के लिए, वजीर तक पहुंचने के लिए। वो वजीर तो इंसान है, इसलिए उस तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी चाहिए, कोई चौकीदार, कोई क्लर्क को आप कहते हैं तो वो आगे जाता है। अल्लाह ताला को तुमने इंसानों की तरह समझ लिया, वो तो समी और बसीर है। वजीर तो तुमसे दूर है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं करीब हूं तुमसे, फिर भी जाके उनके पास चल के जाते हैं। या फिर ये अकीदा रखते हैं कि यहाँ पे जो दुनिया से जा चुके हैं वो हमारी यहाँ पे मदद करे, या सरुल्ला मदद, या अली मदद, या अली मदद तो बहुत आम है, या अली मदद, या वॉस मदद, किससे मांगा जा रहा है इसमें? कहते हम नहीं अल्लाह से ही मांगते हैं ना, हम तो नहीं किसी और से मांगते, ये किससे मांगा जा रहा है? या अली मदद किससे मांग रहे हैं आप? उसका तर्जुमा तो करें, इतना तो आता ही होगा ना, या वॉस मदद की क्या मतलब है इसका? तो ठीक है, दुआ के अंदर जो वसीले की इजाजत है वो भी वो वसीले की इजाजत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। उतने ही खुद ही वसीलों की तर्जमे करके खुद ही बना लेना। तो इबादत, ये भी इबादत है, इसलिए कि दुआ जो है वो इबादत है, बल्कि मुखल इबादत है, इबादत का मगज है, असल जड़ है इबादत की, इबादत का जिस्ट है। अगर दुआ ही आपने किसी और से मांग ली तो किसी और की इबादत कर ली। तो इबादत के तो सारे मरासिम अल्लाह के लिए खालिस कर ली। जो ये कहते हैं कि हम दुआ तो अल्लाह से करते हैं मगर इनके जरिए से करते हैं, तो यही तो मुशरिकीन भी कहते थे कि ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। सूरह जुमर आयत 3 निकाल के देख ले, मुशरिकी इनके बारे में क्या कहा गया। तो तौहीद का चैप्टर ना बहुत क्लियर है, ऐसी कोई इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है। وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, और नहीं कोई भी बस्ती मगर हम उसको हलाक करने वाले हैं कयामत के दिन से पहले। कयामत के दिन से पहले इसको हलाक करने वाले हैं। ये कौन सी बस्ती की बात हो रही है जहां पे शिर्क होता है, हम उसको हलाक करने वाले हैं कयामत से पहले, या औ मुअज्जिबूहा, या फिर हम उसको अजाब देने वाले हैं, उसके ऊपर अजाब आने वाला है। यानी वो बस्ती, ऐसी बस्ती तबाह बर्बाद होके रहेगी है। उनको भी वार्निंग दी जा रही है मुश्रिकी ने मक्का को, और ये भी हमें पता चलता है कि शिर्क वाली बस्ती को अल्लाह ताला हलाक कर देगा या फिर उसको सजा देगा। या तो कोई आसमानी आफत ऐसी आ जाएगी, कोई अजाब ऐसा आएगा जैसे बीमारियां हैं, या किसी और कौम का गलबा है, या उनका जवाल है, या तंगियां हैं, ये सब में से कुछ भी आ सकता है। दुश्मन का तसल्लुत है, ऐसा सख्त अजाब का आना, ज़ालिका फिल किताबे मस्तूरा, ये अल्लाह के पास किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये अल्लाह का फैसला है कि ऐसा हो के रहेगा। और आज आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं ना जमीन के नीचे से कितनी बस्तियां हैं, उनके खंडरात हैं, उनके ऊपर कैसे अजाब आए, कैसे वो हलाक कर दी गई। कुछ का जिक्र हमें कुरान में मिलता, बहुत सारियों का नहीं मिलता, अल्लाह ताला ने मिटा दिया उनको। तो आम कानून यही है। और दूसरा इसके अंदर ये है कि कयामत की तबाही से पहले मिटा दिया जाएगा, जो बड़ी जंग होनी है मलहमतुल कुबरा, जिसमें इतनी तबाही होगी, इतना खून खराबा होगा कि एक कौवा एक परिंदा उड़ना शुरू करेगा और उड़ता उड़ता गिर के मर जाएगा, उसको जमीन पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी जमीन पे लाशें होंगी। अल्लाह ताला माफ फरमाए। وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ, और नहीं रोका हमको कि हम भेजें आयात। आयात से मतलब है यहाँ पे मोजजात, कि हमें किसी और चीज ने रोका नहीं है मोजे भेजने से सिवाय एक बात के, वो क्या है, अन कज़्ज़ब बिहा الْأَوَّلُونَ, कि पहलों ने भी तो इनको झुठलाया, पहलों को कौन सा कोई फायदा हो गया मोजों से ये लोग। अब यहाँ पे देखिये, मैंने आपको कहा था ना कई जगह पे मुशरिकी ने मक्का के जो बात है वो बता के फिर जवाब दिया गया, कई जगह पे सिर्फ जवाब दिया गया, वो बात नहीं बताई गई। किस चीज ने रोका हमें कि हम मौजजा ना दिखाएं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये लोग मौजजा मांगते हैं, ये सफा पहाड़ी को सोने का बना दो, ये पहाड़ यहाँ से हटा दे, यहाँ पे हम काश्तकारी करें, यहाँ पे ये सारे पहाड़ सोने के बन जाए, आप कोई मौजजा तो दिखाएं, मौजजा तो दिखाएं। तो अल्लाह ताला फरमाता है हमने क्यों नहीं मौजजा नाजिल किया, इसलिए कि इससे पहले लोगों को भी तो कोई फायदा नहीं मौजे से हुआ, वो कौन सा ईमान ले आए। वह आते ही ना समुद्र नाका था मुबसीरा तन फला मुंह बिहा, समूद को भी तो उनके मुंह मांगा मौजा दिखाया गया, जो ऊंटनी दिखाई गई मुबसीरा तन, वाजे इतना वाजे एक मौजा उनके सामने आया, मगर फला मुंह बिहा उसको मार ही दिया उन्होंने, उसका जुल्म किया। तो कौमों को लास्ट में इंसानों की हिस्ट्री ये रही है कि कभी उनको मौजों से कोई ईमान नहीं लेकर आता कि मौजा देखेंगे तो हम आएंगे। आज भी कोई लोग कहते हैं वी नीड अ साइन, हमें कोई साइन चाहिए अल्लाह की तरफ से फिर हम ईमान लेकर आएंगे। तो साइन क्या, ऑलरेडी साइंस नहीं है इतने इतने साइंस हैं जो इस कायनात के अंदर बिखरे पड़े हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जो सबसे बड़ा मौजा दिया गया वो ये कुरान है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये कि कयामत के दिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि सबसे ज्यादा मेरी उम्मत होगी, सबसे ज्यादा इसलिए कि ये मोजजा फॉर एवर का है ना, कयामत तक का ये मोजजा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। तो मोजजों ने काम नहीं किया, वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तखवीफा, और नहीं हम नाजिल करते मोजजे मगर सिर्फ डराने के लिए, निशानी तो खबरदार करने के लिए, उनको डराने के लिए होती है, हम भेजते ताकि लोग ईमान ले आए कि अगर नहीं मानोगे तो अजाब आ जाएगा। लेकिन लोग नहीं मानते, फिर भी कहते रहते हमें बस मौजा चाहिए, मौजा देखेंगे तो मानेंगे। और आपको पता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी की कि ये पहाड़ सोने का बन जाए, तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा, उसने कहा अल्लाह ताला आपको सलाम भेजता है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आप कहते हैं तो ये पहाड़ सोने का बन जाता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई काफिर रहा तो फिर वो अजाब उसके ऊपर आएगा, इन लोगों पे वो अजाब आएगा जो जहन्नुम में मैंने किसी को नहीं दिया। यानी अगर मुंह मांगी निशानी देख के लोग काफिर रहे ना, तो बहुत बड़ा अजाब आ जाता है, जैसे समूद के ऊपर आ गया था। और अगर आप कहते हैं तो फिर आपकी उम्मत को मोहलत दे दी जाती है कि जब तक रू नखरे में नहीं आ जाती, उस वक्त तक उनके पास चांस है तौबा का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चीज को ऑप्ट किया था, और इस कुलना लगा इन्ना रब्बा का अहाता बिन्नास, और जब कहा हमने तेरे लिए कि बेशक तेरा रब लोगों को घेरे हुए है, यानी अल्लाह ताला इंसानों को बल्कि सारी कायनात को घेरे हुए है, वो पूरे यानी काबू में अल्लाह के हर चीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहकर मजबूत किया जा रहा है कि आप फिक्र ना करें इनकी बातों पर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोरल डाउन करने की कोशिशें करते थे, प्रोपोगंडास करते थे, डराते धमकाते थे, तो आप फिक्र ना करें, हमने आपको ये कह दिया कि आपके रब ने इन सब को घेरा हुआ। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि नबी अलैहिस्सलाम जब ताइफ गए थे तो वापस आके आप मदीना सॉरी मक्का में दाखिल भी नहीं हो पा रहे थे, आपको अमान चाहिए थी, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी का टाइम था। तो अल्लाह ताला अहाता किए हुए, ये नहीं कि अल्लाह ताला अपनी जात के लिहाज से, अपनी इल्म, अपनी कुदरत, अपनी ताकत, अपनी खबर गिरी से, यानी ये एक बात बताती है कि कोई कहीं भाग नहीं सकता। वमा जालना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास, और हमने आपको जो मंजर दिखाया, कौन सा मंजर, रोया कौन सी, मेराज, और मेराज भी ख्वाब नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया मेराज एक मोजा था। मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों के साथ हुई, इसी वजह से इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया उस मक्का की सोसाइटी में कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, जब आपने आके बताया, तो वो उन्होंने कहा कि ये तो मजनून है, क्योंकि ये तो ऐसी बातें करने लगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, एक रात में ही जाके भी वापस आ जाए, यहाँ पे महीनों का सफर हो जाए, उसको एक रात में इन्होंने तय कर लिया। तो ये तो उनके लिए एक आजमाइश बन गई, उन्होंने कहा हम तो मान ही नहीं सकते, और ईमान वालों का तो ईमान और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन दूसरों के लिए फितना बन गए। और शजरत अलमलऊना फिल कुरआन, और ये क्या मौजे से कम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए हो वापस आए, तो लेकिन ये भी उनके लिए उन्होंने नहीं मानना था, नहीं माने। और शजरे मलऊना कौन सा है, मलऊन दरख्त, असल में दरख्त मलऊन नहीं है, उसको खाने वाले मलऊन होंगे, इसलिए दरख्त को कहा गया कि ये लानत जदा है, क्योंकि इसके खाने वाले लानत जदा है, ये वो दरख्त है जो जक्कूम का दरख्त, जिसको कुरान में कहा गया जो जहन्नमियों का खाना होगा, ये भी उनके लिए फितना बन गया, इसका जिक्र कुरान में भी आया। और जब अबू जहल ने जब इसका सुना था कि ऐसा दरख्त होगा, तो इतना मजाक उड़ाया कि आग के अंदर दरख्त, हमारे लिए खजूर और मक्खन लेकर आओ, यही जक्कूम है, ये खाओ इसको, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इस तरह मजाक हो रहा है, वनुख़व्विफ़ुहुम, और हम डराते हैं इनको, हम इनको डरा रहे हैं ताकि ये अपनी सरकशी छोड़ दे, ये कुफर छोड़ ले, लेकिन फमा यजीदुम इल्ला तुगयान कबीरा, इससे इनको बजाय असर होने के और सरकशी बढ़ती है, बजाय इस बात को सोचें कि देखो अल्लाह ताला की ताकत है ना, आग के अंदर भी दरख्त होना, उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आग दरख्त को तो जला देती है, लेकिन असल में अल्लाह ताला को समझा ही नहीं। जैसे वो है उसको समझा ही नहीं, इसलिए अपनी ही सोच के मुताबिक सोचा कि आग जला देती है दरख्त को तो फिर कैसे दरख्त हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो आग ने नहीं जलाया, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक इंसान ही तो थे ना, और आग इंसानों को जला देती है। जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो वही आग सलामती बन गई। तो आग के अंदर दरख्त रहना कौन सा मुश्किल काम है, ये समझना कौन सा मुश्किल बात है। लेकिन यही बातें कई लोगों के लिए फितना बन जाती हैं। अल्लाह ताला हमें हक को समझने की और हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इन आयात से हमारे ईमान को तकवीत देने का, हमें तकवीत लेने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला तौहीद पे हमेशा कायम रखे हम सबको। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا